मैं संजीव कुमार भार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैं आपको इतिहास के पन्नों से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी के शीर्षक का नाम है महान नीतिकार चाणक्य। यह कौन है काला कलूटा अत्यंत क्रूर मेरे राज दरबार में पुरोहित की गद्दी पर कैसे बैठ गया? राजा नंद क्रोध से चीख उठा था। महाराज यह महान नीतिकार विष्णुगुप्त शर्मा है। नहीं नहीं यह बदशकल आदमी कभी महान नीतिकार नहीं हो सकता। इसकी तो शक्ल देखकर मुझे उल्टी आ रही है। यह ब्राह्मण है या कोई चांडाल? राजानंद के मुंह से अपमानजनक शब्द सुनकर चाणक्य जी को क्रोध आ गया। उनकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो गई। मैं नंद का नाश करके रहूंगा, चाणक्य जी चीख उठे थे। भाग वन। प्राचीन काल के राजे महाराजे आपस में युद्ध ही करते थे। उन्हीं में से एक राजा सक्तार के साथ जुड़े हुए हैं। चाणक्य जैसे ही राजा सक्तार जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक काले करूटे हड्डियों के ढांचे व्यक्ति को कुशों को उखाड़ते हुए उनकी जड़ों में मट्ठा उड़ेलते हुए देखा। कुशों को सींच रहे हो, कर्म कांडी पंडित लगते हो। नहीं ब्राह्मण तो हूँ पर कर्मठ नहीं हूँ। इन्हें सींच भी नहीं रहा बल्कि इसका समूल नाश कर रहा हूँ। इनकी जड़ों में मट्ठा डाल रहा हूँ, इससे यह कभी भी पनप नहीं सकेंगे। यह तो महान कार्य कर रहे हो, इसके बदले में आपको कुछ मिलता है? संसार में हर काम कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता। मैं वर्षों तक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाकर हजारों लंबी चौड़ी आशाएं लिए अपने घर की ओर जा रहा था। माँ बाप ने शादी की बात पक्की कर रखी थी, परंतु इन कांटों ने मेरे पाँव में चुभ कर मेरा रास्ता रोक लिया। मैं समय पर घर नहीं जा सका, अब इनका बीज नाश कर रहा हूँ। मगर क्यों महाराज? जो व्यक्ति अपने शत्रु और रास्ते में आई बाधा का समूल नाश नहीं कर देगा वह अपने ही नाश का उपाय स्वयं करता है। सक्तार हैरान रह गए। वास्तव में इस विचित्र इंसान ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया था। उसे भी तो नंदराज ने बर्बाद किया था। क्या उसे भी इस ब्राह्मण की शिक्षा के अनुसार अपने शत्रु का सर्वनाश करना चाहिए? किंतु वे एक बार फिर उसे कहने लगा, बंधु इतना परिश्रम करने से तो कहीं अच्छा था कि आप पाँव में कुछ पहन लेते, इससे आपके पाँव भी बचे रहते और यह काम भी न करना पड़ता। महाराज आप यह क्यों बोलते हैं? कि यह किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, मैं तो उन सब लोगों के लिए सोच रहा हूँ जो नंगे पाँव चलते हैं, जो गरीब हैं, पाँव के लिए जूते नहीं खरीद सकते। आप महान हैं वो पंडित जी। नहीं मैं महान नहीं, वास्तव में आप लोग महान हैं। मुझे तो देखने में आप कोई राजवंशी लगते हो, फिर इतना निराश क्यों? मैं अभागा मगध का नाथ उप महात्मा सक्तार हूँ। क्या आप उप महात्मा हैं? काला कलूटा ब्राह्मण हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए पीछे हट गया। जी हाँ, मगर आप? मैं विष्णुगुप्त चाणक्य हूँ। आप तो पंडित हैं, आपको मुझे प्रणाम नहीं करना चाहिए था। आप एक महान वीर हैं और जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है आप एक अच्छे राजनीतिक भी हैं, इसलिए मैंने आपकी बुद्धि को प्रणाम किया है। अपने से अधिक बुद्धि वाले इंसान को प्रणाम करना महानता होती है। आप तो अच्छे विद्वान लगते हैं, लेकिन इतने निर्धन क्यों? चलो मेरे साथ चलो, आपको इस हालत में नहीं रह सकता। कहाँ चलूं? एक बात याद रखना राजवंशी, मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता। नहीं पंडित जी ऐसी बात नहीं, हमारे मगध नरेश कल सुबह दान पुण्य करना चाहते हैं। उन्होंने भी मुझे किसी ब्राह्मण को ढूंढ लाने के लिए कहा है, मगर आप मेरे लिए ऐसा क्यों? देखो चाणक्य पंडित, मैं ब्राह्मणों का बहुत आदर करता हूँ। मैं आपको इस जंगल में भटकते नहीं देख सकता। मैं पाटलिपुत्र में आपके लिए एक विद्यालय खोल दूंगा। आप विद्या का प्रकाश लोगों तक पहुँचाने का महान कार्य करेंगे। मैं चाणक्य हैरान रह गए थे। उनकी समझ में शायद कुछ भी नहीं आ रहा था। यहीं से हमारे इस महान राजनीतिक शास्त्र ज्ञाता चाणक्य जी का जीवन गाथा आरम्भ होती है। गरीब और निर्धन यह पंडित जंगल से शहर की ओर चला तो उसे स्वयं भी यह नहीं पता था वह एक दिन इतना महान बनेगा। महान नीतिकार चाणक्य भाग टू। महाराज नंद अपने युग के सबसे बड़े वीर और महान राजाओं में से एक थे। उनके दरबार में जैसे ही चाणक्य एक कुर्सी पर विराजमान हुए आसपास के सभी लोगों ने उन्हें बहुत आश्चर्य से देखा। ब्राह्मणों के साथ यह काला कुलता बदशकल सा ब्राह्मण बैठे देख कर सब हैरान थे। हैरान तो थे ही, किंतु उसमें कोई नहीं बोला क्योंकि राजा जी के आने का समय हो चुका था। राजानंद अपने हाथों से ही सुबह के समय पुरोहितों को दान देते थे। जैसे ही वे दरबार में आए ब्राह्मणों की ओर एक नजर डालते हुए श्रद्धा से देखा। राजा पुरोहित ने राजा जी से उठकर कहा, महाराज ब्राह्मण लोग आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, दान के लिए आप अपना हाथ बढ़ाएं। बस ब्राह्मणों को दान देना हमारा धर्म है, हम दानी पुरुष हैं। इतना कहते ही राजानंद ने सामने बैठे ब्राह्मणों की ओर जो देखा दान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक उनकी नजर सामने बैठे चाणक्य पर पड़ी। यह काला कलूटा बेढंगा वत्सल क्रूर इंसान कौन बैठा है? राजा क्रोध से चीख उठे। यह चाणक्य पंडित है महाराज। नहीं नहीं ऐसा भयंकर और वत्सल काला आदमी कभी पंडित नहीं हो सकता, इसे मेरे सामने से हटा दो और धक्के देकर मेरे दरबार से निकाल दो, मैं इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। महाराजा नंद के मुंह से ऐसे सब सुनकर चाणक्य में आंखें अंगारे उगलने लगी थी। क्रोध के मारे उनका सारा शरीर कांपने लगा था। वह उछल कर अपने स्थान से उठे और महाराज नंद की ओर घृणा से देखते हुए ग्रस कर कहा, अरे शूद्र, तुम अपनी ताकत और भोग विलासी जीवन के कारण अंधे हो गए हो। तुमने आज तक ब्राह्मण का खुलेआम अपमान किया, अपमान किया है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस समय आपका मेहमान हूँ? हमारे धर्म शास्त्र मेहमान को भगवान का रूप बताया गया है। बकवास बंद करो, मैं सम्राट नंदपाल सिंह हूँ। मेरे सामने जवान खोलने की सजा मौत से कम नहीं। यदि तुम ब्राह्मण न होते तो यह काम अब तक हो चुका होता। अब तुम निकल जाओ यहाँ से, अब तुम निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें निकालने के लिए मुझे सैनिकों का सहारा लेना पड़ेगा। राजानंद, तुमने एक ब्राह्मण और साथ में मेहमान का भी अपमान किया है। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य आज अपनी बनी हुई चोटी को खोलकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक नंदज वंश का नाश न कर लूँ, तब तक न तो यह चोटी बांधूंगा और न ही चैन से बैठूंगा। क्रोध से भरे चाणक्य यह शब्द कहते हुए सम्राट नंद को घृणा की दृष्टि से देखते हुए बाहर निकल गए। ब्राह्मण जीवन भर कष्ट तो सहन कर सकता है, किंतु अपना अपमान कभी नहीं सहन कर सकता। विशेष रूप से जब उसकी पूरी जाति का ही अपमान किया जाए, तो उस समय यह संसार का सबसे भयंकर इंसान बन जाता है। सम्राट नंद के सभी बड़े बड़े सैनिक अधिकारी जानते थे कि वे क्रोध में आकर सारे संसार का विनाश करने की शक्ति रखते हैं। इस काले ब्राह्मण ने महाराज का खुलेआम अपमान किया है, अब इसको जान बचानी बहुत कठिन है। राज दरबार में चारों ओर एक भयंकर सन्नाटा छा गया था। लोगों के दिलों की धड़कनें तेज थी, किंतु जवाने खामोश थी। आंखें कभी राजा के चेहरे पर तो कभी चाणक्य के चेहरे पर, शायद वे सब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब महाराज इस ब्राह्मण को मौत का हुक्म सुनाते हैं। चारों ओर भयानक खामोशी छाई रही। चाणक्य क्रोध में पांव पटकते दरबार से बाहर जा रहे थे। सम्राट नंद की आंख में से क्रोध तो जैसे समाप्त हो गया था। उन्हें उस समय इतिहास के एक ब्राह्मण परशुराम की प्रतिज्ञा याद आ रही थी, जिसे जीवन भर कंधे पर कुल्हाड़ा, तीर, कमान, तलवार उठाकर पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश करते रहे। वही थे महान पंडित, जिन्होंने कहीं पर भी तो अपना राज्य नहीं बनाया। बड़े बड़े वीर राजाओं को जान से मारकर वे आगे चले गए। किसी देश के राजा ना बचे और ना ही किसी के धन का प्रयोग किया। उनके सामने यही एक लक्ष्य था, बदला प्रतिशोध। ब्राह्मण जाति के इतिहास में परशुराम एक महान वीर और सबसे अधिक क्रोधी, वेगरज, विश्वासी, त्यागी, तपस्वी माने गए थे। उनके हाथों में बड़े बड़े वीर योद्धा मारे गए। और अब यह अचानक एक लंबी ठंडी सांस भरते हुए राजा नंद ने उस पंडित को अपने दरबार से बाहर जाते हुए देखा। उनका क्रोध तो ठंडा हो चुका था, मगर भविष्य के अंधेरे उनके आँखों के सामने नाच रहे थे। तो क्या यह इस क्रूर ब्राह्मण से हार मान ले? तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सम्राट नंदपाल हूँ, मुझे कोई मेरे ही घर में चुनौती देकर नहीं जा सकता। मैं इसे इस अपमान की सजा जरूर दूंगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो! सम्राट के मुँह से यह सुनते ही बहुत से सैनिक उठकर उसके पीछे भागे। पास बैठी महारानी कुंचवी ने अपने पति की ओर देखकर कहा, नहीं महाराज, इसे मत रोको, यह ब्राह्मण है। स्त्री दुर्बल एवं ब्राह्मण पर हाथ उठाना किसी वीर का काम नहीं। तुम ठीक कहती हो कुंजगी, हम भी क्रोध में इतने अंधे हो गए थे कि हमें कुछ भी बुरा भला नहीं आ रहा था। यह कहते हुए सम्राट नंद अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उनके पीछे महारानी कुंजगी भी चलने लगी। राजा और रानी दरबार से उठकर चले गए, किंतु उनके जाने के पश्चात आर सत्तार बार बार यही सोच रहे थे कि चाणक्य पंडित की इस प्रतिज्ञा का क्या हुआ। क्या वास्तव में ही राजा नंद का विनाश होने वाला है? परशुराम और चाणक्य की प्रतिज्ञा में कोई अंतर नहीं। ब्राह्मण यदि कोई प्रतिज्ञा कर लेता है तो वह उसे पूरा करता है या फिर मिट जाता है। प्रतिशोध की आग सत्तार के अंदर भी तो सुलग रही थी। राजा नंद ने उसे भी तो एक बार बंदी बना दिया था, भले ही आज उसे आजाद कर दिया गया है, मगर बदले की आग तो अब भी उसके अंदर ही अंदर सुलग रही थी। भाग 3। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का जवान था, जिसके पिता मगध सेना में बड़े अफसर थे, लेकिन किसी बात पर नाराज होकर मगध नरेश ने उन्हें जेल में डाल दिया था। उनकी एकमात्र आशा यही थी, यही चंद्रगुप्त था जो बड़ा होकर अपने बाप का बदला ले सकता था। तो उसके सामने सबसे बड़ी चिंता रही थी, अभी चंद्रगुप्त बच्चा है, फिर उसे कोई सलाह देने वाला भी नहीं था। चाणक्य राजा नंद को छोड़कर सीधे पाटलिपुत्र चले आए, वहाँ से सीधे रानी मुरा के पास पहुँचे। रानी मुरा ने अपने महलों में जैसे ही इस पंडित को देखा तो वह बहुत खुश हुई। भूखे ब्राह्मण को पहले तो मुरा ने भोजन करवाया, फिर अपने मन के दुख ब्राह्मण को अपना गुरु मानकर बता दिया। औरत की आंखों से निकलते हुए आंसू को देखकर ब्राह्मण जनक का मन भी पिघल गया। उसने मन ही मन यह निर्णय कर लिया कि वह इस मजबूर और बेसहारा स्त्री का हर हालत में मदद करेगा। इसी बीच चंद्रगुप्त भी बाहर से खेल कर अपने घर आ गया। अपने घर में अजनबी पंडित को देखकर उसने उसे पहले तो कुछ आश्चर्य हुआ, फिर वह दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। आप कहाँ से आए हैं आचार्य, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? बेटे, मेरा नाम आचार्य विष्णुगुप्त चाणक है। क्या आज ही आचार्य चाणक है जिनके बारे में सरकार ने बताया था कि वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के आचार्य हैं? चंद्रगुप्त उनके निकट आकर पांव में झुक गया। हाँ बेटा, मैं ही वही आचार्य चाणक हूँ। तक्षशिला जी तो कह रहे थे कि आपने राजा नंद का विनाश करने की प्रतिज्ञा की है। हाँ बेटा, तभी तो मैंने अपनी चोटी खोल ली है। यह चोटी उस समय तक खुली रहेगी जब तक मैं उस घमंडी मूर्ख राजा का सर्वनाश नहीं कर लूँगा। मगर आप तो ब्राह्मण है, आपके पास न तो कोई सेना है न ही कोई हथियार, फिर आप कैसे? चंद्रगुप्त, मेरे पास भले ही कुछ नहीं मगर मेरे पास एक ऐसा दिमाग है जिससे मैं बड़े से बड़े शक्तिशाली राजा को हरा सकता हूँ। यह बात मत भूलो बेटे कि बुद्धि ही बड़ी होती है। मगर फिर भी यह असंभव सा लगता है कि कोई सम्राट राजा नंद जैसे बहादुर हो हरा दे। बेटे चंद्रगुप्त, क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? मैं चंद्रगुप्त की आवाज़ कांपने लगी। हाँ चंद्रगुप्त, तुम्हारे माथे की रेखाएं बता रही है कि तुम एक दिन महान बनोगे, तुम ही होने वाले सम्राट हो। क्या कह रहे हो आचार्य, क्या मैं भी कभी राजा बन सका हूँ? यह सपना तो मैंने कभी नहीं देखा। चंद्रगुप्त, यह जरूरी नहीं कि आदमी वे सभी सपने देखे जो सत्य हो। आज यह बात अनहोनी सी लगती है, यह सपना सा लगता है, मगर चाणक नीति के आगे यह सब चमत्कार हो सकते हैं, यह सपने साकार हो सकते हैं। बालक, तुम मेरे साथ चलो। बस यहीं से आरंभ होती है चाणक नीति। चंद्रगुप्त जैसे ही साधारण युवक को चाणक ने यवन सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती करवा दिया। यह उस समय की बात है जब तक्षशिला विश्वविद्यालय सारे संसार में प्रसिद्ध था। उसी समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला पर उस समय पुरु का राज था। भारत वर्ष के इतिहास में सिकंदर और पुरु का युद्ध तो प्रसिद्ध है ही। अपनी ही फूट के कारण विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश को लूटते रहे, नष्ट करते रहे। चाणक नीति का एकमात्र लक्ष्य था अपने शत्रु से बदला लेना। किंतु यह बात भी तो सत्य थी कि उसके लिए चाणक को एक ऐसे बहादुर युवक की जरूरत थी जो इस नीति को असली रूप देश के। चंद्रगुप्त यह एक ऐसा विश्वास पात्र युवक था जो उस समय यह सारा कार्य कर सकता था। उसे यही देखकर एक साधारण पंडित ने अपनी बुद्धि से जो महान कार्य आरंभ किया उसे शायद यह युवक चंद्रगुप्त भी नहीं समझता था। हाँ केवल चाणक ही जानते थे कि उन्होंने पाटलिपुत्र पर अधिकार जमाने के लिए क्या कुछ करना है। आचार्य स्वयं एक झोपड़ी में रहते हुए चंद्रगुप्त को आदेश देते रहे और उनके इशारे पर ही वह सेना में रहते हुए सब कुछ करता रहा। राहतों को चोरी से वह आचार्य से मिलता और सेना के सारे भेद उन्हें देता रहा। जैसे ही तक्षशिला पर आक्रमण का इशारा हुआ तो वहाँ के सारे विद्वान आचार्य चाणक के पास आकर उनसे इस बारे में पूछने लगे कि अब इस महानगर का क्या होगा। आचार्य ने हंसकर उत्तर दिया, देखो मित्रों, इस समय जो स्थिति चल रही है उसे देखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि युद्ध वहाँ नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्या आप समझते हैं कि तक्षशिला नरेश बुजदिल है जो सिकंदर से युद्ध नहीं करेगा? यह बात नहीं मित्रों, मैं तो केवल हालात को देखकर बात करता हूँ। मुझे यह नजर आ रहा है कि यह युद्ध केवल नदी के तट तक ही सीमित रहेगा। फिर लोगों ने जब देखा कि आचार्य जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली है तो सब के सब उन्हें मान गए थे। उधर चाणक ने चंद्रगुप्त को सेना में भेजकर उसे युद्ध के सारे दांव पे सीखने का पूरा अवसर दिया था। स्वयं मगध के किसी भी भाग में जाकर चक्ता से संपर्क किए हुए अपने जासूसों को तैयार करने लगा। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने अपमान का बदला चुकाना। उधर जैसे ही मगध वासियों ने यह खबर सुनी कि सिकंदर की महान सेना तक्षशिला से वापिस चली गई है तो सब हैरान रह गए। किसी को क्या पता कि यह सब भी चाणक नीति का ही एक भाग है। चाणक भले ही उस समय मगध में थे मगर उनके जासूस तक्षशिला में काम कर रहे थे और उनमें सबसे बड़ा शिष्य चंद्रगुप्त तो यह सारे काम संभालते हुए थे। और फिर जब लोगों ने यह सूचना सुनी कि सिकंदर की सेना ने विद्रोह कर दिया है तो कुछ लोग तो अवश्य हैरान हुए, किंतु चाणक को यह पता था कि यह विद्रोह तो चंद्रगुप्त के साथ मिलकर उसके जासूसों ने ही करवाया है। चंद्रगुप्त इस युद्ध में लड़ाई के सारे दाव पेच अच्छी तरह सीख गया था, यही तो चाणक चाहते थे। चाणक नीति की अगल पड़ी यह थी कि राजा नंद की सेना में चंद्रगुप्त को भर्ती करवा दिया जाए। यह मार्ग था चंद्रगुप्त को राजगद्दी तक पहुंचाने का। जो चाल सिकंदर की सेना के साथ चली गई थी वही चाल नंद की सेना में चली जाने लगी। चंद्रगुप्त चाणक नीति के सारे सेना में विद्रोह की आग भड़काने लगा और फिर इतिहास ने एक नई करवट बदली। नंद की आधी से अधिक सेना चंद्रगुप्त के साथ मिल गयी। राजा नंद अकेले पड़ गए। चंद्रगुप्त ने राज पर अपना अधिकार जमा लिया और राजा नंद को बंदी बना लिया गया। चंद्रगुप्त सम्राट बना। राजा नंद को जंजीरों में जकड़ कर जब चंद्रगुप्त के सामने पेश किया गया तो सामने बैठे थे महान पंडित चाणक्य। राजा नंद यह देख कर हैरान रह गए। यह तो वही काला कलूटा पंडित था जिसका अपमान करके उसने अपने दरबार से निकाला था और आज यह फिर राजा नंद को मौत की सजा मिली। चाणक्य नीति की यह सबसे बड़ी विजय थी। धन्यवाद।